जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, नितय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नितय गौरा हरि बोल, विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंध 24वां अध्याय भगवान का मत्स्य अवतार श्लोक संख्या 10। तत्र राजर्षिः कश्चिन् नामना सत्यव्रतो महान् नारायणा परो तपत्त नारायण परो तपः। नारायण परो तपतत् तपः स सलिलाशनः तत्र राजर्षिः कश्चिन् नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायण परो तप नारायणो परः तपत् तपः सह सलिलाशनः तत्र राजर्षिः कश्चिन् नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायण परो तपतत् तपः सह सलिलाशनः सत्यव्रतो महान् नारायण परो तपत् माताजी तो नारायणव्रतो महान् नारायण परो तपत तपत तपः सलिलाशनः तत्र राजर्षिः कश्चिन् नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायणो परो तपत तपः सलिलाशनः। तत्र उस प्रसंग में राज ऋषि ही राजा जो ऋषि के समान भी योग्य हो कश्चित कोई नामना नाम वाला सत्यव्रतः सत्यव्रत महान महापुरुष नारायण परः भगवान नारायण का महाभक्त अतपत तपस्या की तपह तपस्या सह उसने सलिल आशनः केवल जल पीकर। अनुवाद और तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा। चाक्षुष मन्वंतर में सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुआ जो भगवान का बड़ा भक्त था। उसने केवल जलपान के द्वारा जीवन को बनाए रखकर तपस्या की। तात्पर्य, भगवान ने वेदों को बचाने के लिए एक बार स्वयंभुव मन्वंतर के शुरू में मछली का रूप धारण किया और दोबारा चाक्षुष मन्वंतर में केवल सत्यव्रत नामक महान राजा पर कृपा करने के लिए मछली का रूप धारण किया। जिस प्रकार वराह के दो अवतार हुए उसी प्रकार मछली के भी दो अवतार हुए थे। भगवान ने एक मत्स्यावतार हयग्रीव को मारकर वेदों की रक्षा करने के लिए धारण किया और दूसरा मत्स्यावतार राजा सत्यव्रत पर कृपा करने के लिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पिछले रविवार को भगवान श्री कृष्ण के मत्स्य अवतार की चर्चा प्रारंभ हुई थी। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में राजा परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं या कहते हैं, भगवान श्रोतुमिच्छामि हरेर अद्भुत कर्मणः, कि मैं भगवान श्री हरि के अद्भुत कर्मों के बारे में लीलाओं के बारे में सुनने के लिए इच्छुक हूँ अवतार कथाम आद्यम माया मत्स्य विडंबनम। विशेष रूप से उनका सबसे पहला जो अवतार था जिसमें कि उन्होंने एक मछली का रूप धारण किया। और राजा परीक्षित कहना चाहते थे कि वैसे तो भगवान श्री हरि सदैव दिव्य रहते हैं, उनका कोई भौतिक संसार से संबंध नहीं है, फिर भी जब वो प्रकट हुए तो इस तरह के एक निम्न श्रेणी की योनि में क्यों प्रकट हुए जो कि एक निंदनीय योनि है। कहने का तात्पर्य ये था, जब भगवान मनुष्य योनि में प्रकट होते हैं जो कि श्रेष्ठ योनि मानी जाती है 84 लाख योनियों में, तब हम समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, मुनि हुए, मनुष्य जीवन में हम सब सत्संग कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु मछली जैसे योनि इसमें क्या किया जा सकता है। इसलिए ऐसे निंदनीय योनि में भगवान ने क्यों अवतार लिया, क्या उद्देश्य था उनका। साधारणतः जब भगवान अवतार लेते हैं अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, परंतु उनमें एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि वो किसी उनके विशेष भक्त की रक्षा करना चाहते हैं। तो इस बार जब वो मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए तो किन की रक्षा की उन्होंने, तो इस प्रकार से जब प्रश्न पूछे राजा परीक्षित ने तो शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। और उन्होंने कहा कि वैसे जब भगवान अवतार लेते हैं तो हाँ ये सही बात है कि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकट होते हैं। इन बातों की चर्चा विस्तार में पिछली बार हुई थी, केवल संक्षेप में अब बता रहे हैं ताकि हमें याद आ जाए, स्मरण हो जाए कि पिछली बार क्या चर्चा हुई थी, और उन भक्तों के लिए भी जो कि पिछली बार नहीं आ पाए थे। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, गायों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, साधु अर्थात भक्तों की रक्षा करने के लिए, वेद शास्त्रों की रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म में बताए गए हुए जो जीवन का उद्देश्य है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और यद्यपि भगवान विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं, कभी निम्न श्रेणी की योनि, कभी उच्च श्रेणी की योनि, फिर भी इन योनियों का प्रभाव श्री कृष्ण के ऊपर नहीं पड़ता है। यद्यपि ऐसे प्रकट होता है कि भगवान एक मछली हैं, या भगवान एक शूकर हैं, या भगवान एक मनुष्य हैं, या भगवान एक देव हैं, फिर भी भगवान का इन योनियों से कुछ संबंध नहीं है। भगवान सदैव परे रहते हैं। पर ऐसे कहकर शुकदेव गोस्वामी ने भगवान के इस अद्भुत मछली अवतार या मत्स्य अवतार का वर्णन करना प्रारंभ किया। तो क्योंकि ये मछली अवतार में भी स्वयं भगवान ही है जो प्रकट हुए, इसलिए इनके बारे में श्रवण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बहुत मनोरम कथाएं हैं ये। भगवान के इन अवतारों के बारे में सुन के भगवान के प्रति आकर्षण और प्रेम बढ़ता है, हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा कि पिछले कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तो कुछ घटनाएं हुई। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उनकी आयु 100 साल की है, परंतु हमारे 100 साल नहीं, उनके 100 साल। ब्रह्मांड के भीतर अलग अलग जो लोक होते हैं, ग्रह होते हैं, उन ग्रहों में, उन लोकों में समय का प्रवाह एक तरह से नहीं होता। ब्रह्मा जी के 100 आयु हमारे लिए बहुत बहुत लंबी आयु है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो अवधि है वो ब्रह्मा जी की आयु है। तो ब्रह्मा जी के संपूर्ण आयु में उनके 100 वर्ष होते हैं, उनके 100 प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं, उनके दिन, हमारे दिन नहीं। और उनके हर एक दिन में 14 मनु होते हैं और मनु के जीवन की अवधि को मन्वंतर कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और हर एक मनु या हर एक मन्वंतर के अवधि में 70 से अधिक चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग में 4 युग होते हैं, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग। ऐसे 71 चतुर्युग जब बीत जाते हैं तो एक मन्वंतर हो जाता है। और इन युगों की अवधि तो बहुत लंबी है, लाखों लाखों सालों में है। तो हमारे कल्पना के बाहर है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी होती है, ब्रह्मा जी का एक दिन भी कितना लंबा होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को कभी कभी कल्प भी कहते हैं। तो कल्पांते, तो ब्रह्मा जी के पिछले दिन के अंत में वो जब सो गए, ब्रह्मा जी भी सो जाते हैं जैसे हम रात को सो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी उनके दिन के अंत में विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। और जब वो सो गए तो उस समय क्या हुआ, उनका ध्यान सृष्टि पर नहीं रहा। जब हम सो जाते हैं हमारा ध्यान नहीं रहता है ना, हम जागृत अवस्था में न होने के कारण हमारे व्यवसाय के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर आदि ध्यान नहीं रह जाता। तो ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की सेवा है सृष्टि का सृजन करना और पालन करना। तो जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब ध्यान नहीं दे पाते हैं सृष्टि के ऊपर, तो उस समय एक भयंकर प्रलय हो गया और हो जाता है। जब भी ब्रह्मा जी शयन करते हैं रात को, कभी कभी बीच बीच में नींद की झप्पियां आ जाती हैं उनको भी। जैसे आपने देखा होगा कि जब प्रवचन के समय मंदिर में सभी भक्त बैठे हुए होते हैं तो आप दाएं बाएं कभी देख लेंगे, आगे पीछे कभी देखा होगा कि भक्तों को नींद की झपकियां आ जाती हैं, आती है ना। और खास करके जप करने के लिए बैठते हैं तो आते ही आती है नींद की झपकियां। तो ब्रह्मा जी को भी कभी कभी ऐसी नींद की झपकियां आ जाती हैं, तो उस समय भी कभी कभी छोटे छोटे प्रलय हो जाते हैं। परंतु बड़ा प्रलय जब होता है जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं पूरी तरह से रात को। तो इस समय भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, ये तीनों लोक जो हैं प्रलय जल के नीचे आ गए। और इसलिए यहाँ पर जितने भी प्राणी या योनियाँ रहते हैं वो अभी जीवित नहीं रहे। तो ऐसे प्रलय क्यों हुआ, क्योंकि भगवान चाहते थे कि जब ब्रह्मा जी नींद से जाग जाएं और उनका एक नया कल्प या नया दिन प्रारंभ हो जाए तो फिर सृष्टि का सृजन पुनः हो जाए। ब्रह्मांड का पूरा हिस्सा जो है वो प्रलय जल में डूब नहीं जाता है, केवल भू भुव स्व ये तीन लोक डूब जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का जीवन का अंत होता है उनके 100 सालों के बाद, तब संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। परंतु ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जो प्रलय होता है वो संपूर्ण प्रलय नहीं होता है, केवल ब्रह्मांड का एक हिस्सा, एक भाग ही प्रलय जल में डूब जाता है। तो ब्रह्मा जी के सवेरा जब उनका जब उनकी सुबह जब हो जाती है, उस समय जब सृष्टि का सृजन उन्हें करना पड़ता है प्रातः काल में, तब केवल भू भुव स्व इन लोकों का पुनर्सृजन करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर से वेद आदि की आवश्यकता होती है तो ब्रह्मा जी को भी याद दिलाना पड़ता है कि आपको सृष्टि का सृजन करना है, किस तरह से करना है। वैसे तो ब्रह्मा जी को पता हो जाता है। जिस प्रकार से जब हम नींद से उठ जाते हैं सुबह को, तो तुरंत हमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा व्यवसाय क्या है, मेरे परिवार क्या है, घर क्या है। किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी कभी जब गड़बड़ हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो अब उठते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। परंतु साधारणतः ऐसे नहीं होता है। तो खैर, जब ब्रह्मा जी सो गए थे तो उस समय पास में स्थित एक असुर जिसका नाम हयग्रीव था, उसने ब्रह्मा के मुख से जो वेद निकले थे उनको चोरी कर लिया। तो उस समय जब वेद चोरी हो गए तो क्या हुआ, यहां तक पिछले रविवार को कथा हुई थी और आपको बताया गया था कि आप में से जो जानना चाहते हैं कि हयग्रीव असुर ने जब ब्रह्मा जी के मुख से बाहर आने वाले वेदों को चोरी कर ली तो क्या हुआ, यदि ये जानना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा अगले रविवार। आप सब आ गए हैं तो भी आपको ये बता दें, ये रहस्य का खुलासा कर दें कि उस समय भगवान को पता चला, ज्ञात्वा, जानकर, क्या जानकर, तद दानवेंद्रस्य, वो दानवों के राजा जो थे हयग्रीव, हयग्रीवस्य, तो भगवान ने जान लिया कि दानवों के राजा, असुरों के राजा हयग्रीव ने चेष्टितम कौन सा कार्य कर दिया है। कौन सा कार्य किया था, वेदों को चोरी कर लिया। तो उस समय भगवान हरिरीश्वर, भगवान जिनको हरि या ईश्वर भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया, दधार, उन्होंने स्वीकार किया। रूपम, एक रूप को, किस प्रकार के रूप को स्वीकार किया, शफरी, शफरी अर्थात मछली। तो जब भगवान ने जान लिया कि हयग्रीव नाम के असुर ने ऐसे वेदों को चोरी कर लिया है, तो भगवान ने एक मछली का रूप धारण कर लिया। तो मछली का रूप ही क्यों धारण किया, क्योंकि प्रलय था, सब जगह पानी का बाढ़ था और पानी के अंदर सारे भू भुव लोग सब डूबे हुए थे। तो जब इनको उतारना, उनको, इनकी रक्षा करनी थी, वेदों की रक्षा करनी थी, तो पानी के अंदर जाने की आवश्यकता थी। तो इसलिए भगवान ने मत्स्य अवतार स्वीकार किया। भगवान जो भी उपयुक्त रूप है वो स्वीकार करते हैं, उनकी लीलाओं के लिए जो आवश्यक है, जो उपयुक्त है, ऐसे रूप को वो धारण करते हैं। तो इसलिए उन्होंने मछली का रूप धारण कर लिया। अब आज के श्लोक जिसका पठन हमने थोड़ी देर पहले किया, तत्र राजर्षि ही, तो उस समय एक राजर्षि ही कश्चिन, अभी एक दूसरी कथा प्रारंभ करने वाले हैं शुकदेव गोस्वामी। अभी इसके पहले तक एक श्लोक में उन्होंने इतना ही कहा कि वेदों की रक्षा करने के लिए और हयग्रीव का वध करने के लिए भगवान प्रकट हुए, और इस श्लोक में जिसका पठन हमने अभी किया, इसमें शुकदेव गोस्वामी एक दूसरे मत्स्य अवतार का वर्णन करते हैं। और जैसे कि प्रभुपाद जी ने यहां तात्पर्य में स्पष्टीकरण किया है कि मत्स्य अवतार ब्रह्मा जी के इस दिन में या कल्प में दो बार प्रकट हुए। पहली बार जब हयग्रीव ने ब्रह्मा जी के मुख से वेद चोरी कर लिए थे, तो जब ब्रह्मा जी का नींद से जागे थे तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के एक दिन में जो पहला मनमंत्र है, जिसको स्वयंभुव मनमंत्र कहते हैं, जिसमें मनु का नाम स्वयंभुव मनु है उसमें वो प्रकट हुए और उन्होंने हयग्रीव का वध कर दिया और वेदों की रक्षा की, वेदों को बचा लिया। जबकि ब्रह्मा जी जागे, देखा कि अरे वेद कहाँ गए, वेदों को क्या हो गया। तो इस तरह से ब्रह्मा के ऊपर भी कृपा कर ली भगवान ने। तो ये पहला प्राकट्य था ब्रह्मा जी के एक इस दिवस में। पहले मनु के समय, स्वयंभुव मनु के समय वो प्रकट हुए। परंतु अब इस श्लोक में जो वर्णन हो रहा है वो ब्रह्मा जी के इस दिन में ही एक अन्य मनु के समय जो घटना हुई उसका वर्णन हो रहा है। तो ये कौन से मनु हैं? ये छठे मनु हैं जिनका नाम है चाक्षुष मनु। तो अब सातवां मन्वंतर चल रहा है। जिस मन्वंतर में हम रह रहे हैं उस समय के, इस समय के जो मनु हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु, सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र। तो यहां पर इस दूसरे बार जब मत्स्य अवतार प्रकट हुए तो क्या हुआ? तत्र राजर्षि ही कश्चिन नामना सत्यव्रतो महान। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बहुत महान नारायण परह, अर्थात नारायण परायण एक भक्त थे जो राजा भी थे, इसलिए उनको राज ऋषि कहते हैं और उनका नाम था सत्यव्रत। और सत्यव्रत ने क्या किया? अतपत, उन्होंने तपस्या में अपने आप को स्थित कर लिया। और किस तरह की तपस्या की उन्होंने? तपः सह सलिलाशनः, सलिल अर्थात जल, आशनः अर्थात उन्होंने पान किया। तो देखिए कैसी भयंकर तपस्या उन्होंने की, कोई भोजन ग्रहण नहीं किया, केवल जलपान किया बस। इतना ही उन्होंने किया और ऐसे जलपान करते करते उन्होंने आगे चल के वो अगले, वो सत्यव्रत राजा जो है वो अगले मन्वंतर में स्वयं मनु बन गए। तो अगले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं यो सावस्मिन महाकल्पे तनयः स विवस्वतः श्राद्ध देव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पितः। तो वही सत्यव्रत राजा अपने अगले जन्म में जब अगला मन्वंतर का समय हुआ तो वो विवस्वान सूर्यदेव के तनय या पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उनका नाम था और है श्राद्ध देव इति ख्यातः। तो इस श्राद्ध देव नाम से वो विख्यात हैं। और मनुत्वे हरिण अर्पितः, तो हरिणा अर्थात हरि के द्वारा वो नियुक्त किए गए मनु के पद के लिए। तो मनु ये भी एक पद होता है, मनु शब्द से ही शब्द मनुष्य आता है। अंग्रेजी में शब्द मैन वो भी मनु से आता है। तो कौन निर्धारित करते हैं कि कौन मनु बनेगा या कौन नहीं बनेगा? भगवान स्वयं करते हैं। तो हर एक मनु के जीवन की अवधि में जितने भी बड़े बड़े देवता होते हैं वो भी नियुक्त किए जाते हैं। इंद्रदेव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, वरुण देव, वायुदेव। तो हर एक मनु के समय, हर एक मन्वंतर में देव देवता भी बदलते रहते हैं। जैसे मनु बदलते हैं देवता भी बदलते हैं। तो चाहे वो मनु हो या देवता हो ये सब पद होते हैं। जिस प्रकार से जब चुनाव होता है किसी प्रजातंत्र में तो मंत्री बदलते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से जब मनु बदलते हैं हर एक मन्वंतर में तो फिर देवता बदल जाते हैं, मनु बदल जाते हैं। जो भी योग्य जीव होते हैं उनको ये पद प्रदान किया जाता है भगवान की कृपा से। और फिर ये अपने अपने जिम्मेदारियों को संभालते हैं, वायुदेव वायु का कार्य करते हैं, सूर्यदेव सूर्य का कार्य करते हैं, और मनुदेव वो अपनी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से वही सत्यव्रत राजा जो चाक्षुष मनमंत्र में राजा थे, अब सातवें मनमंत्र में स्वयं मनु बन गए विवस्वान के पुत्र होकर। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी यहां पर वर्णन करते हैं। और सत्यव्रत राजा के समय, छठे मनु मनमंत्र के समय ही, इससे पहले कि वो श्राद्ध देव या वैवस्वत मनु बने, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। और अब शुकदेव गोस्वामी ये मत्स्य अवतार के दूसरे प्राकट्य का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। संक्षेप में पहले प्राकट्य का वर्णन कर चुके हैं। क्या था वो? कि ब्रह्मा जी के मुख से जब वेद निकले, जबकि ब्रह्मा जी नींद में थे, तो हयग्रीव ने वेदों को चोरी कर लिया। तो भगवान ने प्रकट हो भगवान मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने वेदों की रक्षा कर ली, हयग्रीव का वध कर लिया, ब्रह्मा जी के पास वेदों को पुनः पहुंचा दिया। तो ये ब्रह्मा जी के इस दिन के पहले मनमंत्र में, स्वयंभुव मनमंत्र में हुआ। अब छठे मनु के समय किस प्रकार से प्रकट हुए मत्स्य अवतार के रूप में भगवान, ये अभी शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और जैसे कि हम बचपन से सुनते आए हैं, जब कहानियां प्रारंभ होती हैं तो कैसे प्रारंभ होती हैं? मराठी में आप क्या कहते हैं? एकदा एकदा एकदा, एक दिन। अंग्रेजी में कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम। एकदा, एक बार एक राजा था, एकदा एक राजा होता। कन्नड़ में क्या कहते हैं? उन्द काल दिल्ली। सही है, गलती हो गई। तो एक समय ऐसे था, एकदा, तो यहां पर भी कहते हैं एकदा, संस्कृत में भी एकदा कहते हैं। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम् तस्यांजल्युदके कचित काचित शफर शफरी एक अभ्यपद्यत। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं एकदा, एक बार, बहुत दिन हो चुके, इसका मतलब जब हम एकदा कहते हैं ना, बहुत दिन हो चुके। कृतमालायाम, कृतमाला नदी के तट पर, कुर्वतः कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जलतर्पणम, जलतर्पण, जैसे पूर्वजों के लिए आदि सब करते हैं ना, तो कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे? यही सत्यव्रत राजा, जिनका उल्लेख दो श्लोक पहले हो चुका है। तो ये सत्यव्रत राजा कृतमाला नदी में थे और तर्पण, जल तर्पण कर रहे थे। तस्य अंजलि उदके कचित, उनके अंजलि में, अंजलि अर्थात उनके मुट्ठी में, तो तस्य उनके अंजलि में उदक, उदक अर्थात जल, थोड़ा सा जल लिया उन्होंने तर्पण करने के लिए। शफरी एक अभपद्यत, शफरी अर्थात मछली, अभपद्यत अर्थात प्रकट हो गई, उत्पन्न हो गई। तो अर्थात अचानक जब सत्यव्रत राजा ऐसे कृतमाला नदी में जल तर्पण कर रहे थे, उनके अंजलि में उन्होंने जल स्वीकार किया अर्पण करने के लिए, अचानक उन्होंने देखा कि अरे यहां जल में तो मछली है। तो ये मछली स्वयं मत्स्य अवतार थी, परंतु उस समय राजा सत्यव्रत को पता नहीं था। ये उनको लगा कि इतनी छोटी सी मछली है, यह हथेली में आ गई। आगे चल के राजा सत्यव्रत ने क्या किया, ये हम इस प्रवचन में चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां जिस स्थान में मत्स्य अवतार प्रकट हुए उस स्थान का उल्लेख है, इसलिए इस स्थान की महिमा का गान करने का प्रयास आज करेंगे। जिस प्रकार से जितना हम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, उनके प्राकट्य स्थान मथुरा या वृंदावन का भी हम वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, जितना हम श्री रामचंद्र का गुणगान करते हैं, अयोध्या का गुणगान भी करते हैं, जितना हम श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं, उनके नवद्वीप धाम का भी गुणगान करते हैं। तो इसलिए जिस स्थान में मत्स्य अवतार प्रकट हुए थे उसका उल्लेख इस श्लोक में आता है। तो वो स्थान क्या है? कृतमालायाम, कृतमाला नदी के तट पर। तो ये कृतमाला नदी कहाँ है, आप में से कोई बता सकते हैं? कृतमाला नदी, कृतमाला नदी का नाम, ये पुराना नाम है, संस्कृत नाम है, शास्त्रों में लिखा हुआ नाम है, परंतु आजकल ये तमिलनाडु में वैगई या भागाई नाम से जाना जाता है नदी। आप में से कोई तमिलनाडु के, तमिलनाडु में रहने वाले कोई भक्त नहीं है ना इधर? हाँ, कोई है? नहीं, भक्त आए हैं, तमिलनाडु के भक्त है ना? वैगई नदी है ना, वैगई नदी को जानते हैं आप अच्छी तरह से। तो उसका पुराना नाम है कृतमाला। जैसे बेलगाम के पास नदी, छोटी नदी है, बहुत छोटी है, मलप्रभा कहते हैं, परंतु उसका पौराणिक नाम क्या है? मलापहारी। इसने मल का अपहरण करती है जो नदी। तो उसी प्रकार से ये कृतमाला नदी अभी वैगई के नाम से जानी जाती है, या भागाई भी। और ये नदी है जहां पर मत्स्य अवतार प्रकट हुए थे। तो ये वैगई नदी मलय पर्वत में से प्रकट होती है। मलय पर्वत का भी अलग नाम अभी तमिल भाषा में है, मुझे पता नहीं है, तो क्योंकि मैं तमिल भाषा नहीं जानता। तो जैसे और एक नदी है जहाँ से जो वहाँ से प्रकट होती है, तो दोनों नदियाँ जो हैं, ताम्रपर्णी नदी है वो, हाँ, तो ताम्रपर्ण नदी और वैगई कृतमाला नदी दोनों ही ये मलय पर्वत से प्रकट होती हैं और फिर बहते हुए तमिलनाडु प्रांत से जाके फिर समुद्र को मिल जाती है अपने अलग अलग स्थानों में। तो इसका एक प्राचीन इतिहास है। ऐसे बताया जाता है कि वहाँ के एक राजाओं की वंशावली थी जिनको पांड्य कहते हैं, पांड्य राजा बहुत प्रसिद्ध है, जैसे चोल थे, पांड्य थे इत्यादि। तो पांड्य राजा थे, तो एक पांड्य राजा की पुत्री थी जिसका नाम था मीनाक्षी। अब ये मीनाक्षी जो राजकुमारी थी, ये पार्वती देवी के अवतार थी। तो बचपन से ही मीनाक्षी को शिव जी के प्रति बहुत आकर्षण था, बहुत उपासना करती थी। और मीनाक्षी ने तय कर लिया कि मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो प्रारंभ में तो उनके पिता और उनकी माता वगैरह बहुत हैरान हो गए, ऐसे थोड़ी होता है, जैसे आपके घर में कोई बच्ची हो और जब विवाह का समय हो और विवाह के समय में बच्ची कहे कि नहीं, मैं किसी मनुष्य के साथ विवाह नहीं करूंगी, मैं शिव जी के साथ विवाह करूंगी, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ना ऐसे थोड़ी होता है। परंतु ये लड़की साधारण लड़की नहीं थी, ये तो स्वयं पार्वती देवी थी। तो अंततः पांड्य राजा तैयार हो गए, शिव जी को निमंत्रण दिया गया, आइए आपका विवाह है। तो शिव जी आए, परंतु शिव जी कैसे बारात में नहीं आए? यहाँ कभी हम देखते हैं बारात जब चलती है ना, तो फिर वर को घोड़े के ऊपर बिठाया जाता है और शानदार वस्त्र पहनाए जाते हैं, पगड़ी वगैरह होती है ना, तो वाद्य आदि बजते हैं, परंतु शिवजी जब आए तो ऐसे अवस्था में नहीं आए, जैसे थे वैसे आए। शिवजी तो एक वैरागी हैं, एक तपस्वी हैं, उनके कंठ में सर्प है, शरीर पे स्मशान की धूली है का लेप लगाया हुआ होता है, जटाधारी रूप में आए शिवजी विवाह के स्थान पर। वही वर सब लोग देखे, अरे ऐसे ये वर है, तो वर के अच्छे कपड़े होने चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो शिवजी जैसे वैसे आ गए, शिवजी हैं आखिर, साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो और अकेले आए, बस एक व्यक्ति साथ में थे। तो पांड्य राजा को बड़ा क्रोध आया कि अरे अकेले आ गए विवाह के लिए, जब विवाह के लिए आते हैं तो वर के साथ इतने सारे रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं, बड़ी बारात आती है और आप अकेले आ गए, मैंने इतना सारा भोजन आप सबके लिए बनाया है, कौन खाएगा। तो फिर उस समय शिवजी ने उनके साथ में जो व्यक्ति था कहा कि ये मेरे मित्र है, इनका नाम है कुंडोधर, ये एक असुर था लेकिन शिवजी के साथ में थे, शिवजी की कृपा उसके ऊपर थी, ये व्यक्ति आपका सारा भोजन खा लेगा, आप चिंता मत कीजिए, एक व्यक्ति ये काफी है। तो फिर सारा भोजन था, विवाह वगैरह हो गया होगा उस समय। विवाह होने के बाद फिर कुंडोधर ने सारा भोजन अकेले ग्रहण कर लिया। अब प्यास लगी तो पानी चाहिए, तो वहां जितना भी पानी उपलब्ध था, थोड़े बहुत जो तालाब हुए होंगे, कुएं होंगे होंगे, गुह हुए होंगे, सब पानी पी लिया, सारा जगह सूख गया। और प्यास लगी थी, मुझे जल चाहिए। अब जल कहाँ से लाए, पांड्य राज बड़े हैरान हो गए, अब तो मेरे प्रांत में पानी ही नहीं रहा, इसने तो सब कुछ पी लिया, अब क्या किया जाए। तो फिर शिवजी ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने अपने जटाओं को थोड़ा सा हिलाया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिलाया ऐसे बस। और शिवजी के जटाओं में क्या है, गंगा जी है। जब गंगा जी प्रकट हुई थी, ऊपरी लोकों से पृथ्वी पर आई थी, तो शिव जी ने धारण किया था गंगा जी के जल को, इसलिए शिव जी का नाम गंगाधर है, जैसे हम शिवरात्रि को चर्चा कर रहे थे। तो शिव जी ने अपने जटाओं को थोड़ा सा हिला दिया तो गंगा जल आ गया, तो गंगा जल से तृप्त हो गया ये कुंडोधर। और जब वो तृप्त हो गया तो और जो जल बह रहा था शिव जी के जटाओं से, इसकी धारा इतनी ज्यादा थी कि वो नदी बन गई, और उस नदी को वैगई कहते हैं। आप में से जो तमिल भाषा जानते हैं, मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो मुझे ठीक कर लीजिए, गई मतलब हाथ, वही मतलब आगे करो, ऐसे हमने पढ़ा है, सही है नहीं? गई वैगई, तो वैगई। तो शिव जी ने कुंडोधर से कहा था हाथ आगे करो, और क्योंकि उसने हाथ आगे किया था और उसमें फिर जल आ गया था, जल का पान किया था, इसलिए उस नदी का नाम हो गया वैगई। अभी आजकल भागई भी नाम से जाना जाता है। तो ये प्राचीन इतिहास है इस नदी का। तो कृतमाला ऐसे नाम हो गया, या तमिल भाषा में इसे वैगई या भागई कहते हैं। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में यह भी बताया गया है कि बलराम जी वहां पर गए थे। बलराम जी तीर्थ यात्रा में निकले थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध का युद्ध जब हो रहा था, तो बलराम जी ने भाग नहीं लिया था ना युद्ध में, तो वो घूमते घूमते भ्रमण करते करते दक्षिण भारत में भी आए थे, और मलय पर्वत में आए थे, कृतमाला में स्नान किया, और ताम्रपर्णी नदी में भी स्नान किया उन्होंने। मलय पर्वत में ऐसे भागवत में बताया गया है कि उन्होंने अगस्त्य ऋषि का दर्शन किया, क्योंकि कृतमाला नदी वहां से भी बह रही थी, तो बलराम जी ने वहां भी स्नान किया, प्रणाम किया अगस्त्य ऋषि को, अगस्त्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया बलराम को, बलराम ने आशीर्वाद स्वीकार करके अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। अगस्त्य ऋषि का नाम सुनकर मुझे एक घटना याद आ रही है। जब मैं श्री राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में रहता था, मैं भी राधा गोपीनाथ मंदिर प्राय शुरू हो ही गया था, एक साल दो साल हो गए थे उस समय मंदिर को शुरू हुए हुए। तो जब मैं मंदिर में अंदर आया, प्रवेश किया एक बार, तो एक मैंने विदेशी व्यक्ति को देखा अंदर। तो विदेशी व्यक्ति को देखकर सोचा, अच्छा ये आए हैं व्यक्ति, तो मैंने बात करना शुरू कर दिया। बहुत दुखी लग रहा था, वो आंखों में आंसू थे, बहुत दुखी सा लग रहा था। और जवान नहीं था वो, लगभग 60 की आयु हुई होगी उसकी कम से कम। तो मैंने बात करना शुरू किया उनसे कि कैसे आए हो यहाँ पर इत्यादि। तो कहने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा क्या बात है? मेरी माँ का देहांत तो हो गया। तो मैंने कहा कि ये लगभग 60-65 साल के थे, तो उनकी माँ की आयु तो बहुत ज़्यादा हुई होगी। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, बहुत खेद है ये खबर सुनकर कि आपका माँ का देहांत हो गया। तो ऐसे 2-4 मिनट बात किया, फिर मैंने कहा कि देखो, मैंने सांत्वना देने का प्रयास किया कि आपकी भी आयु इतनी हुई, तो आपकी माँ की आयु तो बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ऐसे बुढ़ापे में आजकल कलयुग में जहना भी अच्छा नहीं है, और अंततः सबकी मृत्यु तो होनी होनी है। तो ऐसे भगवान की योजना समझ के आप स्वीकार कर लीजिए। परंतु वो तैयार नहीं थे। नहीं, मैं मेरी माँ से इतना आसक्त हूँ कि मैं उसे पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, ये तो संभव नहीं है। अब ये कैसे संभव है? क्योंकि एक बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पुनर्जीवन, अब उसको पुनर्जीवित करना संभव नहीं होता। तो मृत्यु को, हमें हमारे प्रिय व्यक्तियों की मृत्यु को स्वीकार करने के लिए सीखना चाहिए, हमें और कोई उपाय नहीं हमारे लिए। नहीं नहीं मैंने एक किताब पढ़ा था, इस किताब में लिखा था कि अगस्त्य ऋषि के पास ऐसी योग शक्ति है कि वो एक मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। और मैं अगस्त्य को ढूंढने के लिए आया हूं। तो मैंने कहा, आप अमेरिका से यहां आए अगस्त्य ऋषि को ढूंढने के लिए, ताकि वो आपके मां को पुनर्जीवित कर सके? बोला हाँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मुझे पता नहीं था इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा कुछ है क्या है। खैर, कभी कभी क्या है, ऐसे दुख में व्यक्ति कुछ कर भी देता है, बोल देता है। मैंने कहा कि देखो, ऐसे तो संभव नहीं है। तो अगस्त्य ऋषि हैं, कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, देखिए पहले वो उत्तर में रहते थे, परंतु क्या हुआ कि एक कथा है, पौराणिक कथा, जो अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि विषयांतर ज़्यादा हो जाएगा। परंतु अगस्त्य मुनि ने ये देखा कि वो विंध्या पार करके गए, क्योंकि विंध्या पर्वत बहुत ऊंची 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 होती जा रही थी और दक्षिण में कोई सूरज ही नहीं आ रहा था। तो फिर अगस्त्य मुनि ने दक्षिण प्रांतों की रक्षा के लिए विंध्या पार किया और कहा विंध्या से कि जब तक मैं लौट के न आऊं तुम और बढ़ोगे नहीं। और उसके बाद अगस्त्य मुनि दक्षिण में ही रहे और विंध्या पार करके वापस गए ही नहीं। इसलिए विंध्या पर्वत जैसे है वैसे है और सूरज की रोशनी दक्षिण भाग में भी पड़ती है। तो मैंने ये पहले से पढ़ा था, ये पौराणिक कथा, तो मुझे पता था उस समय कि तमिलनाडु प्रांत में लगभग रहते हैं वो। परंतु मैंने उनसे कहा कि देखो, पुराणों में ऐसे यद्यपि कहा गया है और अगस्त्य ऋषि आज भी शायद जीवित हैं, परंतु आप और हम जैसे साधारण व्यक्ति उनको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि भागवत में ऐसे लिखा गया था बलराम जी मिले थे उनसे, बलराम देख सकते हैं उनको, कृष्ण देख सकते हैं, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं हो सकते हैं वो देख सकते हैं, परंतु हम और आप जैसे साधारण व्यक्ति तो नहीं देख सकते उनको। तो आप मत जाइए, मेरी सलाह ये है कि आप यहाँ भगवान कृष्ण हैं, देखिए इनके शरण में आप रहिए, आप हम सब के बीच में रहिए। हालांकि यहाँ कोई रहने का स्थान, उस समय कोई स्थान नहीं था रहने के लिए वहाँ पे, छोटा सा कमरा था, वो कमरे में हम सब लोग रहते थे। तो अभी यहाँ आप हम सब के बीच में रहिए, चाहे तो आप होटल में रह जाइए, यहाँ पे आइए रहिए, कहा नहीं, मुझे तमिलनाडु में जाना, तुम्हें तमिलनाडु कहाँ है क्या है ढूंढूंगा। तो मैंने सोचा बताना नहीं चाहिए था मुझे। खैर वो किसी न किसी तरह से ढूंढ लेता, उस समय इंटरनेट का समय तो नहीं था कि ढूंढ के पूछ लिया कि अगस्त्य कहाँ रहते हैं। तो निकल गए बेचारे, गए भी होंगे तमिलनाडु मुझे पता नहीं, गए होंगे और क्या हुआ उनका बाद में मुझे तो पता नहीं। तो खैर कहने का तात्पर्य यह है कि अगस्त्य ऋषि वहाँ पर रहते हैं, हम लोग नहीं देख सकते उनको, व्यासदेव भी हैं पर हम नहीं देख सकते उनको। ऐसे कितने सारे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, चिरंजीव भी हैं जो रहते हैं, उनको देख नहीं सकते हम। परंतु बलराम उनको मिल पाए, तो बलराम जी गए, उनका दर्शन किया। ऐसे चैतन्य भागवत में दर्शन है कि नित्यानंद प्रभु भी कृतमाला नदी में उन्होंने स्नान किया, ताम्रपर्णी नदी में स्नान किया, और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु भी गए थे वहाँ पर। तो चैतन्य महाप्रभु जब कृतमाला नदी में गए, वहाँ पे उन्होंने स्नान किया और उस प्रांत में रहे, तो काफ़ी विस्तार में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में। और इस दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण घटना भी हुई थी, बहुत सुंदर लीला भी हुई थी। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मुखारविंद से मैं जो यहाँ चैतन्य चरितामृत में लिखा है उसका वर्णन मैं करूँगा। तो संन्यास लेने के बाद, जैसे कि आपको पता है, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा में गए, अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते करते अंततः दक्षिण मथुरा नाम के स्थान में पहुंचे। दक्षिण मथुरा क्या है? मदुरई, जो तमिलनाडु में बड़ा शहर है। मदुरई शायद चेन्नई के बाद मदुरई ही सबसे बड़ा शहर है, या दूसरे तीसरे नंबर पे होगा तमिलनाडु में। तो ये मदुरई, ये वैगई या कृतमाला नदी के तट पे है। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण मथुरा आइला कामकोष्ठी होइते, तहां देख होइल एक ब्राह्मण सहिते। तो कामकोष्ठी स्थान से होकर फिर वो दक्षिण मथुरा या मदुरई में आ गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये मदुरई नदी भागाई नदी के तट पे है। बाद में प्रभुपाद जी कहेंगे कि ये भागाई नदी का दूसरा नाम है वगई वैगई या कृतमाला नदी, और विशेष रूप से ये शैव क्षेत्र है। शिव जी के उपासक इस स्थान में अधिक रूप से जाते हैं, वहाँ शिव जी के दो प्रमुख मंदिर हैं और मीनाक्षी देवी जो कि दे पार्वती देवी हैं उनका भी बहुत बड़ा मंदिर मदुरई में है। तो आप में से जो मदुरई गए हैं अवश्य मीनाक्षी देवी के मंदिर में भी आप गए होंगे। तो यहाँ पर एक समय कुलशेखर राजा भी राज किया करते थे। कुलशेखर राजा का नाम तो आप सबने अवश्य सुना है। तो वो जो जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर गए तो वहाँ पर एक ब्राह्मण से मिले। तो ये ब्राह्मण कैसे थे? राम भक्त शैव विप्र विरक्त महाजन। बहुत बड़े राम भक्त थे ये ब्राह्मण और बहुत विरक्त थे, वैरागी थे वो, और राम भक्ति में सदैव मग्न रहते थे। कृतमालाय स्नान कोरी आयल तार घरे, भिक्षा की दिबे न विप्र पाक नहीं करे। कृतमालाय स्नान करी आयल तार घरे, तो महाप्रभु ने कृतमाला नदी में स्नान किया और इस ब्राह्मण के घर में आए। शायद पहले से ही बात हुई होगी कि मैं आपके घर में आऊँगा प्रसाद भोजन ग्रहण करने के लिए। तो दोपहर के समय आ गए महाप्रभु, परंतु उन्होंने क्या देखा? भिक्षा की दिबे न विप्रा पाक नहीं करे, कि वो ब्राह्मण ने जिनका नाम रामदास था, रामदास विप्र ने भोजन पकाया नहीं था। तो परोसते कैसे, अर्पण कैसे करते महाप्रभु को? महाप्रभु कहे तारे सुन महाशय, मध्यान्न होइलो केना पाक नहीं होए। अरे महाशय सुनिए, दोपहर हो गया, अभी तक भोजन क्यों नहीं पकाया? विप्र कहे प्रभु मोर अरण्य वसती, पाकेर सामग्री बने नामिले संप्रति। तो विप्र कहे, विप्र ने कहा कि हे प्रभु, मैं अरण्य में निवास करता हूं। अरण्य अर्थात वन, जंगल में निवास करता हूं। पाकेर सामग्री वने न मिले संप्रति, अभी तक जो सामग्री है भोजन पकाने के लिए वो अभी तक पहुंचा नहीं है मेरे पास। अभी वो ऐसे क्यों बोल रहे थे? श्री राम भक्ति के भाव में थे वो। राम के इतने बड़े भक्त थे ना, तो राम के बारे में ही सोच रहे थे, और राम कैसे वनवास में गए हैं, लक्ष्मण के साथ में हैं, सीता देवी उनके साथ में हैं, तो इसी भाव में वो बस मस्त थे। तो अपने घर में रहते हुए भी वो सोच रहे थे कि मैं अभी वन में हूं और अभी तक भोजन पका नहीं है। तो महाप्रभु ने सुना, अरे आश्चर्य हो गया उनको। फिर वन्य शाक फल मूल आनिबे लक्ष्मण, तबे सीता कोरी बेना पाक प्रयोजन। वो कहने लगे, जब लक्ष्मण जो अभी वन में गए हैं कंद मूल आदि सब लाने के लिए वनस्पति, जब लक्ष्मण लौट के आएगा तब सीता देवी जो है वो भोजन बनाएगी, तब हम खाएंगे। अब चैतन्य महाप्रभु भी भूखे थे, अब ये सोच रहे कब लक्ष्मण आएंगे और कब सीता देवी भोजन बनाएंगी और कब फिर भोजन मिलेगा। परंतु महाप्रभु इतने प्रभावित हुए इस रामदास विप्र के भाव से कि वो भी बड़े प्रसन्न हुए, और उपवास करने में उनको कोई आपत्ति नहीं थी। तार उपासना सुनी प्रभु तुष्ट होइला, अस्तव्यस्ते शय विप्र रंधन कोरिला। तार उपासना सुनी प्रभु तुष्ट होइला, तो महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए इस राम भक्त के भाव को देखकर। इतने भाव विभोर हो गए थे वो महाप्रभु को, ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। परंतु रामदास विप्र प्रसन्न नहीं थे, अस्त व्यस्त हो गए थे, रंधन कुरीला, जोर जोर से रोने लगे वो। तो क्यों रोने लगे? फिर अंततः वो उन्होंने पकाना भोजन शुरू कर दिया, रंधन करी लो। तो भोजन पका जब शुरू किया, भोजन बनाना, 3 बज गए थे। प्रभु भिक्षा कोइल दिनेर तृतीय प्रहरे, निर्विण्ण से विप्र उपवास करे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने तृतीय प्रहरे, जब दोपहर समाप्त हो चुका था, लगभग दोपहर के 3 बज गए थे, तब जाकर महाप्रभु ने प्रसाद लिया। परंतु जो ब्राह्मण थे वो बहुत दुखी थे, उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, उपवास किया उन्होंने। तो क्यों उपवास किया? प्रभु कहे विप्र काहे कर उपवास, कहन ए तो दुख कहन कर हुताश। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा, अरे हे विप्र, तुम उपवास क्यों कर रहे हो? इतने दुखी क्यों हो? क्यों चिंतित हो? इतने हताश क्यों हो गए हो? विप्र कहे जीवने मोर नहीं प्रयोजन, अग्नि जले प्रवेश छाड़ी बो जीवन। जीवन मोर नहीं प्रयोजन, मेरे जीवन जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। अग्नि जले प्रवेश छाड़ी बो जीवन, अग्नि में या तो जल में प्रवेश करके मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। क्यों? क्यों आत्महत्या करना चाहते हैं? क्यों इतना दुखी हो गए हैं रामदास विप्र? जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी, राक्षस स्पर्शील तारे यह काने सुनी। तो उनके दुख का कारण था जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी को राक्षस स्पर्शिला, राक्षस रावण ने स्पर्श किया, इसके बारे में मेरे कानों तक खबर पहुंची कि सीता देवी जो स्वयं महालक्ष्मी हैं, तो उनका स्पर्श राक्षस रावण ने किया। ये खबर मेरे कानों तक पहुंची है और इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ है। ए शरीर धरी बारे कभू न जुझाए, ए दुखे ज्वल देह प्राण नहीं जाए। तो मेरे दुख के कारण मैं मेरे शरीर के अंदर प्राण को धारण करके नहीं रख पा रहा हूं, और इसलिए यद्यपि मेरा शरीर जल रहा है, फिर भी मेरा प्राण शरीर छोड़ के नहीं जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा, प्रभु कहे ए भावना ना करी हो आर, पंडित हो न कहने ना कर हो विचार। अरे आप तो बड़े पंडित हैं, इस तरह से सोचिए मत, आपको जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? ईश्वर प्रेयसी सीता चिदानंद मूर्ति, प्राकृत इंद्रिय तारे देखित नहीं शक्ति। सीता देवी ईश्वर प्रेयसी हैं, चिदानंद मूर्ति है, उनका सच्चिदानंद विग्रह है, भौतिक पदार्थों से उनका शरीर नहीं बना हुआ है। प्राकृत इंद्रियेर तारे देखिते नहीं शक्ति, जिनका जड़ पदार्थों से बना हुआ शरीर है, जैसे रावण हो या अन्य कोई साधारण व्यक्ति हो, वो अपने इंद्रियों से ऐसे चिदानंद मूर्ति सीता देवी का दर्शन भी नहीं कर सकता। स्पर्श करने की बात तो दूर रही। स्पर्शी बार कार्य आचुक न पाए दर्शन, सीता रा आकृति माया होरिल रावण। तो क्योंकि ऐसे व्यक्ति देख भी नहीं सकता, तो रावण ऐसे भला कैसे संभव है कि रावण ने अपहरण किया होगा सीता देवी का? वास्तव में सीता देवी ने केवल क्षमा कीजिए, रावण ने सीता देवी का माया रूप हरण कर लिया। रावण आ सीतई सीता अंतर्धाना कोई लो, रावण आगे माया सीता पठाई लो। तो जब रावण प्रकट हुआ सीता देवी के सामने, सीता देवी अंतर्धान हो गई, अदृश्य हो गई, और रावण को धोखा देने के लिए, रावण को मोहित करने के लिए सीता देवी का एक माया स्वरूप सामने प्रकट हुआ। अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर, वेद पुराणे ते एक कहे निरंतर। तो वेद पुराण में निरंतर यह व्याख्या की गई है कि कोई आध्यात्मिक वस्तु का स्पर्श कोई भौतिक वस्तु नहीं कर सकता है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में भौतिक वस्तु और भौतिक मानसिकता प्रविष्ट नहीं हो सकते। विश्वास करो हो तुम्हें अमार वचने, पुनरपि कु भावना न करी हो मने। तो मेरे शब्दों में श्रद्धा रखो हे रामदास, और इस प्रकार का दुख कभी भी जीवन में नहीं करो, और ये गलत धारणा मन में नहीं रखना कि सीता देवी का अपहरण रावण ने कर लिया। रावण ने जिस रूप का अपहरण किया वो केवल माया सीता थी। तो ब्राह्मण ने जब चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से ये बात सुनी तो उनका हृदय थोड़ा संतुष्ट हो गया। अच्छा, तो मेरे अपूजनीय सीता देवी का स्पर्श रावण ने नहीं किया, ठीक है, तब मैं प्रसाद ले लेता हूँ। तब बड़े आनंद से फिर उस रामदास विप्र ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से वहां पे कृतमाला नदी में स्नान करके मदुरई में ऐसे रामदास विप्र का संग किया और ये लीला वहां पर घटी। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जब मथुरा दक्षिण मथुरा छोड़कर आगे चले गए तो कृतमाला के तट से ही चलते गए, और चलते चलते कहाँ पहुंचे? तारे आश्वासिया प्रभु कोरिला गमन, कृतमालाय स्नान कोरी आयला दुर्वसन। तारे आश्वासिया, उनको आश्वासन देके प्रभु कोरिला गमन, फिर प्रभु महाप्रभु चले अपनी यात्रा में। कृतमालाय स्नान कोरी आयला दुर्वसन, फिर कृतमाला नदी में स्नान किया और दुर्वसन नाम के स्थान में आ गए। तो दुर्वसन का दूसरा नाम है दर्भशयन, जो कि प्रभुपाद जी अगले श्लोक में कहते हैं। तो दुर्वसन या दर्भशयन में क्या है? दुर्वसन रघुनाथे कोयलो दर्शन, महेंद्र शैले परशुरामेर कोयलो वंदन। दुर्वसन नाम के स्थान में रघुनाथ या श्री रामचंद्र का दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु ने। महेंद्र शैले, महेंद्र शैल, महेंद्र पर्वत पर जाकर परशुराम जी का भी की भी वंदना की चैतन्य महाप्रभु ने। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि दुर्वसन या दर्भशयन ये तिरुपुल्लानी नाम के स्थान के पास में है, शहर के पास में है। इसका उच्चारण क्षमा कीजिए, मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, आप में से तमिल भाषी जो हैं आप बुरा मत मानिए। तिरुपुल्लानी ये शहर का नाम है, दर्भशयन। तो इसके पीछे भी एक लीला है। लीला ये है कि जब श्री रामचंद्र चित्रकूट में थे वनवास के समय, तो एक असुर आया जिसका नाम था कुरंग। तो ये कुरंग ने सीता देवी का स्पर्श करने का प्रयास किया। तो उस समय भगवान रामचंद्र ने एक कुश घास के तिनकों को उठाया और उसके अस्त्र के रूप में प्रयोग करके इस कुरंग का वध कर दिया। तो बाद में श्री राम सोच रहे थे कि ये जो कुश घास का तिनका है, इसने मेरी इतनी सेवा की, ये अस्त्र बन गया मेरे लिए और सीता देवी की रक्षा की, तो मैं इसके ऊपर भी कृपा करना चाहता हूँ। तो जब श्री रामचंद्र समुद्र के तट पे आए थे और समुद्र देव की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वो हमें लंका जाने के लिए एक मार्ग बना देंगे ताकि जल के भीतर से हम चल सकें, तो उस समय उन्होंने उसी कुशाग्रास का एक आसन बनाया और उसी आसन के ऊपर उन्होंने शयन किया। तो कुश घास का नाम तो आपने सुना है, कुश और दर्भ, दर्भ घास दोनों एक ही है। दर्भ घास हो, कुश घास हो, हमारे गोकुल धाम में भी कुश घास भरपूर होता है। तो ये कुश घास पवित्र माना जाता है। जब कोई धार्मिक क्रियाएं होती हैं, यज्ञ आदि होते हैं, तो कुश घास या दर्भ घास के आसन बनाए जाते हैं। और क्रिया धार्मिक क्रियाएं करते समय जो उंगली में एक अंगूठी पहनी जाती है दर्भ घास के, तो ये बहुत पवित्र घास ऐसे माना जाता है। और इसका उद्गम वराह अवतार से संबंधित है। जब वराह अवतार गर्भोषक सागर से बाहर निकले, तो जैसे आपने देखा होगा जो पशु योनि पशु होते हैं, गीले होने के बाद क्या करते हैं? अपने शरीर को हिलाते हैं, और हिलाते समय जो उनके शरीर पर जल होता है निकल पड़ता है। तो ये उनके शरीर से जो जल निकल पड़ा जब पृथ्वी पे आया, तो एक दो बूंद गिरे होंगे यहाँ वहाँ, तो उनसे कुश घास उत्पन्न हुआ। तो कुश या दर्भ ये बहुत पवित्र घास है, खास करके जब ध्यान आदि जप आदि के लिए बैठते हैं तो इसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये स्थान हुआ दर्भशयन। फिर आगे चल के महाप्रभु निकल पड़े। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये रामचंद्र का मंदिर यहाँ पर है, आगे चल के चैतन्य महाप्रभु सेतु बंध गए रामेश्वर, जहाँ पे उन्होंने धनुष तीर्थ नाम के स्थान में स्नान किया और फिर रामेश्वर मंदिर में गए और लौट कर आए। वहाँ पर उन्हें कूर्म पुराण के कोई पन्ने मिले जिनमें यह बताया गया था कि कैसे वास्तव में जो भी उन्होंने रामदास विप्र को कहा था जैसे कि वैसे ही वहां पे वर्णन था उस कूर्म पुराण के पन्नों में कि वास्तव में पतिव्रता शिरोमणि जानक नंदिनी जग तेरा माता सीता रामेरे गृहिणी, कि सीता देवी श्री राम की पत्नी है, जगत माता है, और जब रावण अपहरण करने आ गया सीता देवी का तो उस समय सीता देवी ने अग्निदेव का शरण ग्रहण किया तो अग्निदेव ने सीता देवी के शरीर को ढक लिया और रावण के सामने एक माया स्वरूप रख लिया सीता देवी का। तो जिस सीता देवी का अपहरण रावण ने किया वो माया सीता थी और सीता देवी जो असली सीता देवी है वो अग्निदेव के साथ रही। और एक श्लोक में बताया गया है कि पार्वती देवी भी वहां पर थी। और जब वापस श्री रामचंद्र आए रावण का वध करके विभीषण को राज सिंहासन पर बिठाकर तब अग्नि परीक्षा हुई। तो ये अग्नि परीक्षा की लीला जो है ये जो अभक्त होते हैं ये निंदा करते हैं इसकी कि श्री रामचंद्र ने ऐसे क्यों करवाया, क्या सीता देवी पर उनका भरोसा नहीं था, क्यों ऐसे किया उन्होंने, अन्याय किया उन्होंने, अत्याचार हुआ। तो ऐसे आधुनिक काल में ऐसे अनेक लोग टीका करते हैं, निंदा करते हैं भगवान की, परंतु वो कूर्म पुराण के इस बात को नहीं जानते, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को नहीं जानते, रामायण को ठीक तरह से नहीं जानते। तो अग्नि परीक्षा की लीला इसलिए हुई ताकि जो असली लीला असली सीता देवी थी वो पुनः प्रकट हो सके। तो माया सीता प्रविष्ट हो गई अग्नि में और अग्नि ने फिर से जो मूल सीता हैं उनको लाके प्रकट किया श्री रामचंद्र के सामने। तो बाह्य कारण था कि सबको दिखाना कि सीता देवी शुद्ध है, रावण ने उनका स्पर्श नहीं किया इत्यादि, परंतु गुह्य बात यह है कि असली सीता जो है वो अग्निदेव के लोक से प्रकट होकर बाहर आई। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये पन्ने देखे तो उन्होंने मूल पन्ने साथ में ले लिए और उनकी प्रतियां बनाकर वहां पर छोड़ दिए। जैसे आजकल हमारे यहाँ इस तरह के किताब होते हैं ना, पुराने जमाने में इस तरह के किताब नहीं होते थे, पन्ने होते थे, तो पन्ने के ऊपर ऐसे लिखा जाता था कांटों से या अन्य कलम, तरह तरह के कलम होते थे उनसे। तो वहाँ के श्लोक भी साथ में लेकर आए और फिर से वो वापस मथुरा, दक्षिण मथुरा में आ गए और आकर उन्होंने रामदास विप्र को ये दे दिया। फिर वहां जाके कृतमाला नदी में स्नान किया उन्होंने और रामदास विप्र जो हैं वो बड़े आनंदित हो गए और श्री रामचंद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पड़े, दंडवत प्रणाम किया और अब कहने लगे कि मुझे पता है कि आप ही श्री रामचंद्र हैं जो सन्यासी के रूप में मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मेरे घर में पधारे हैं। तो मेरे मानसिक व्याकुलता के कारण पिछली बार जब आप मेरे घर में आए थे तो मैं आपको ठीक तरह से प्रसाद भी नहीं दे पाया, मैंने ये ऐसे तैसे कुछ भी पका लिया, मुझे भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस समय भाव विभोर था, दुखी था, परंतु अब मैं बड़े हर्षित अवस्था में हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से भोजन खिलाने की अनुमति दे दीजिए। तो फिर बड़े आनंद से उन्होंने भोजन पकाया, महाप्रभु को अर्पण किया और चैतन्य महाप्रभु रात में वहीं पर रुके उस ब्राह्मण के घर में। अगले दिन प्रातः काल में निकल पड़े, त ताम्रपर्णी नदी में उन्होंने स्नान कर लिया और अपनी यात्रा में आगे बढ़े। तो जिस स्थान में मत्स्य अवतार प्रकट हुए, कृतमाला नदी में, उसी स्थान में ऐसे अनेक अन्य लीलाएं भी हुई थीं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे एक देश में रहते हैं, ऐसे एक पृथ्वी के भाग में रहते हैं जहाँ पर इतने सारे लीलाएं हुई हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। और मैंने जब आपको बताया कि बलराम उन स्थानों में गए थे, तो उन स्थानों में और एक जगह भी वर्णन है दशम स्कंद में कि करभजन मुनि, शायद नव योगेंद्र में से एक हैं, वो बताते हैं महाराज निमि को कि सतयुग के लोग कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं और ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि कलयुग में बहुत सारे नारायण के भक्त होने वाले हैं, नारायण परायणाः, और ऐसे नारायण के भक्त भारतवर्ष में होंगे विविध स्थानों पर, विशेष रूप से द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में। और उस समय उन्होंने विशेष रूप से इन चार नदियों का उल्लेख किया जो कि द्रविड़ देश में हैं। ताम्रपर्णी है, कावेरी है, कृतमाला है, और एक कोई है एक नदी, ताम्रपर्णी और एक कोई है ऐसी नदी, और साथ साथ जो उड़ीसा में है प्राची नदी और महानदी, ऐसे नदियों का उल्लेख उन्होंने किया कि इन स्थानों में बहुत प्राय जितने भी लोग होंगे वो सब भगवान नारायण के शुद्ध भक्त होंगे। तो इसलिए सत्ययुग के निवासी भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। और फिर यहाँ कृतमाला नदी के बारे में भी बताया गया कि वह वही स्थान है जहाँ पर बहुत प्राचीन काल में भगवान मत्स्य अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। तो देखिए दक्षिण भारत में भी कितने ऐसे सुंदर स्थान हैं, नदियाँ हैं, कृतमाला, तुंगभद्रा, पयस्विनी, हाँ ये और एक नदी थी पयस्विनी नदी, पयस्विनी भी केरल में है, केरल और तमिलनाडु में। तो पयस्विनी, कृतमाला, ताम्रपर्णी, कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी है दक्षिण भारत में, और कितने सारे नदियां हैं। ये नदियां साधारण नदियां नहीं हैं, गंगा के समान है, गंगा से अभिन्न है। तो ऐसे स्थानों में हमें कभी कभी जाना चाहिए, वहाँ स्नान करना चाहिए, वहाँ भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, नामोच्चारण करना चाहिए। तो अब ये कृतमाला नदी का वर्णन इस श्लोक में जो हुआ है, एकदा कृतमालायाम कुर्वतो जलतर्पणम तस्यांजल्युदके कचित् शफरी एक अभ्यात अभ्यपद्यत। तो इस श्लोक में जो कृतमाला नदी का वर्णन किया गया है, जिस स्थान में मत्स्य अवतार प्रकट हुए, अभी इस कृतमाला का वर्णन हमने संक्षेप में किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षम, धन्यवाद। श्री मत्स्य अवतार की जय, श्री कृतमाला नदी की जय, गौर प्रेमानंदे। और ये जो द्रविड़ देश की बात हो रही है ना कि द्रविड़ देश में बहुत सारे भक्त होंगे, ऐसे आचार्यों ने बतलाया है कि ये आलवार होंगे, जो श्री वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त हैं उनकी भविष्यवाणी की गई थी।
हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी को आज के इस सुंदर कथा के लिए। तो आइए महाराज जी को धन्यवाद देते हैं तीन बार जोर से हरि बोल कह के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब स्वागत करेंगे उन भक्तों का जो आज पहली बार इस रविवार के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो जो भक्त यहाँ पे पहली बार आए हैं रविवार के कार्यक्रम में, कृपया आप थोड़ी देर के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए। कृपया संकोच ना करें, पहले बार आए हुए भक्त जगह पे खड़े हो जाइए ताकि हम अच्छी तरह से आपका स्वागत कर सकेंगे। हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तथा गौ नेता से कि वे उनकी कृपा आप सबको प्रदान करें। साथ में यह भी आशा करते हैं कि आज का दिवस आपके उज्जवल भक्तिमय जीवन का शुभारंभ हो। आइए इन नए भक्तों का भी हम स्वागत करेंगे तीन बार जोर से हरि बोल कह के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इन सूचनाओं के पश्चात पीछे हमारे एक भक्त खड़े हैं संतोष मित्राणी प्रभु, कृपया आप उनसे मिलिए। संतोष मित्राणी प्रभु आपको एक छोटा सा उपहार और श्री राधा गोकुलानंद का महाप्रसाद देंगे। हरे कृष्णा, कृपया बैठ जाइए। विशेष सूचना है, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो भी मुंबई में स्थित है वहां पे एक वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर निर्मल चंद्र प्रभु और उनकी पत्नी डॉक्टर सोनल वो बेलगाम में आ रहे हैं और उनके आने यहाँ आने का प्रयोजन है कि बेलगाम के जो हमारे भक्त हैं उनको आयुर्वेदा की दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य की किस तरह से रक्षा की जाए इसके बारे में मार्गदर्शन वे करना चाहते हैं। साथ में वो आयुर्वेदिक दृष्टि, माफ कीजिए, जो प्रभु जी यहाँ पे आएंगे अगले रविवार को तो उनके यहाँ आने का जो विषय है सेमिनार का वह है कि आयुर्वेदिक की दृष्टि से किस तरह से खाना बनाया जाए, किस तरह से हम जो पकाते हैं घर में तो उस तरह किस तरह से उसे पकाया जाए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसके ऊपर वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। आपको याद होगा कि जब कोविड की बीमारी यहाँ पे चल रही थी तो हमने आपको एक आयुर्वेदिक दवाई दी थी आयुर्कोरो, जो कि इन्हीं डॉक्टर निर्मल चंद्र प्रभु और उनकी पत्नी डॉक्टर सोनल की टीम के अन्य सदस्य और ये दोनों ने उसे बनाई थी और हमारा सौभाग्य है कि वे दोनों यहाँ पे आ रहे हैं अगले रविवार को। तो आप सबसे निवेदन है, विशेषता जो हमारे सत्संग मंडल के सेवक और सारे सदस्य यहाँ पे आइए, उनका यहाँ पे जो सेमिनार होगा वह आने वाले रविवार को दोपहर 4 बजे होगा। तो प्रवचन के पश्चात हम नीचे जाके प्रसाद लेंगे और प्रसाद के पश्चात 4 बजे हमें फिर से यहाँ पे एकत्रित होना है। और इस सेमिनार में स्वयं महाराज भी उपस्थित रहेंगे तो कृपया बड़ी संख्या में आने वाले रविवार को 4 बजे यहाँ पे एकत्रित होइए। शुक्रवार 18 मार्च चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है तो इस दिवस पे हम गौर पूर्णिमा का महोत्सव मनाए रहे हैं और इस अवसर पर 3 दिन की गौर कथा का भी आयोजन किया है और गौर कथा करेंगे महाराज। कथा का जो तिथि है वह है 16, 17 और 18, 3 दिवस। 18 मार्च को शुक्रवार है, उससे पहले 2 दिवस यह कथा शुरू होगी, यानी कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को। कथा का समय होगा शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक और गौर पूर्णिमा का दिन यानी कि शुक्रवार 18 मार्च को सुबह की भी कथा भागवत कथा परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज देंगे और शाम के कार्यक्रम उस प्रकार होंगे, शाम को 6 बजे से यहाँ पे मंदिर में भजन कीर्तन, शिष्य गौर नेताए के विग्रहों का अभिषेक, प्रवचन, आरती और सबके लिए महाप्रसाद होगा। आने वाले रविवार को प्रसाद बनाने की सेवा इस प्रकार से है, विपिन पुरंदर सत्संग मंडल जिसके सेवक है माधवचरण प्रभु और गोकाक प्रचार केंद्र जिसके सेवक है मोहन प्रभु। रथ यात्रा के बारे में प्रभु कुछ सूचनाएं देंगे।
हरे कृष्णा, जैसे कि पिछले सप्ताह कहा गया था 17 अप्रैल को रथ यात्रा हो रही है तो उसके लिए जो भी सेवाएं हैं, जो अलग अलग विभाग के भक्त हैं तो उनकी सूची सब हर साल जो करते हैं वैसी ही है। तो रथ का रिनोवेशन करना है या अन्य भी जो सेवाएं पहले से करनी होती हैं, जैसे कलेक्शन भी है सबसे पहले, तो उसके जो आमंत्रण पत्रिका है आ गई है रिसेप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं और ये सब डोर टू डोर नहीं करना है। तो सबसे पहले जो बड़े बड़े डोनर्स या 500 रुपये से ऊपर जो हर साल आप करते हैं उनके पास जाके इसी हमको कलेक्शन करना है। तो जो भक्त ये सेवा करते हैं तो कृपया रिसेप्शन से अपने अपने आमंत्रण पत्रिका और जो भी रिसीट है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य सेवा और कुछ सूचनाएं आप कुछ रथ यात्रा में सुधार चाहते हैं तो कृपया जो कमेटी है वहां पे उनके नाम लिखे हैं या मुझे आकर आपका जो भी सुझाव है दे सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद सबके लिए महाप्रसाद है, तो महाप्रसाद के लिए सबको कूपन लेना अनिवार्य है। तो जिन भक्तों ने एक से पहले आए हैं उनको रेड कूपन मिला है, जिसके बाद में आए हैं उनको व्हाइट कूपन नीचे से अपना जो रिसेप्शन काउंटर है वहां से प्राप्त करना है। और कीर्तन के तुरंत बाद जो सीनियर सिटीजन है वो प्रसाद के लिए जाएंगे, उसके बाद जो रेड कूपन है वो जाएंगे, और कीर्तन होने के बाद जो 10-15 मिनट व्हाइट कूपन जिनका है वो प्रसाद के लिए चीज देंगे। हरे कृष्णा।